आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक है पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का ये दूसरा सप्ताह था। इस सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को दोनों सदनों की बैठकें हुई। विभिन्न त्योहारों के कारण बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित रही। दो दिन के अवकाश के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए अगले हफ्ते शनिवार और रविवार को भी बैठक होने की घोषणा दोनों सदनों में की गई। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल निर्बाध तरीके से चला। इसके बाद सदन में वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्यों ने सरकार पर रेलवे से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य हासिल करने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि भारतीय रेल की वित्तीय हालत गंभीर है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि राजस्व वसूली कम हो गई है। यात्री श्रेणी में 92,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया जा सका, जबकि दो बार किराए में बढ़ोतरी हुई है। चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि सरकार को रेलगाड़ियों के भीतर की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का विकास कई दूसरे राज्यों के मुकाबले कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह ने कहा कि 2014 के बाद 34,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे पटरी बिछाई गई है। जनता दल यूनाइटेड के कौशलेंद्र कुमार ने सरकार से वरिष्ठ नागरिकों, पत्रकारों, दिव्यांगजनों और 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और 55 साल से अधिक आयु के पुरुषों के लिए रेल किराए में छूट को बहाल करने की मांग की। शिवसेना उबाठा के अरविंद सावंत ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ का मुद्दा उठाया। भाजपा के विष्णु दयाल राम ने कहा कि आज भारतीय रेल में परिचालन जटिलताओं के समाधान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल डेटाबेस और कवच जैसी प्रौद्योगिकियों का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है, जिससे रेल यातायात अपेक्षाकृत सुरक्षित हुआ है। भाजपा के ही रामवीर सिंह बिधूड़ी ने चर्चा में भाग लेते हुए रेलवे में सुरक्षा, आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं में लगातार ध्यान दिए जाने की बात कही। कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि उनका राज्य देश की जीडीपी में 3 से 4% का योगदान देता है, लेकिन रेलवे अवसंरचना के मामले में हरियाणा को पर्याप्त संसाधन नहीं मिले हैं। समाजवादी पार्टी के देवेश शाक्य ने कहा कि सरकार से मांग की है उन्होंने कि वंदे भारत रेलगाड़ियों पर जोर देने के बजाय सरकार को पैसेंजर ट्रेन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के रेलवे बजट को लगातार कम किया जा रहा है। माकपा नेता अमरा राम ने सीकर की जनता और खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए रेलगाड़ी चलाए जाने की मांग की। चर्चा में विभिन्न दलों के कई अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों और उससे जुड़े विनियोग विधेयक पर चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने रसोई गैस की कमी नहीं होने का दावा करने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद अरुण सिंह ने दावा किया कि पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने तेल और गैस संकट से बचने के लिए समय रहते कई कदम उठाए हैं। द्रमुक सदस्य पी विल्सन ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी सदस्य राघव चड्ढा ने आयकर रिटर्न से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि पति पत्नी को एक इकाई माना जाना चाहिए। बीजू जनता दल बीजद के मुजीबुल्ला खान ने ओडिशा के लिए विशेष पैकेज की मांग की। वहीं राजद के मनोज कुमार झा ने कहा कि श्रम और रोजगार सहित कई ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिनके आवंटन लगभग स्थिर हैं। अन्नाद्रमुक सदस्य एम थंबीदुरै ने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस पर द्रमुक सदस्यों ने आपत्ति जताई। माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि देशभर में रसोई गैस की कमी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है और कोविड जैसी स्थिति बन गई है। समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन ने उत्तर प्रदेश के आलू किसानों की समस्याओं का जिक्र किया। मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण देश में गैस की समस्या पैदा हुई है। भाजपा के संजय सेठ ने कहा कि ईरान और इसराइल अमेरिका युद्ध तथा यूक्रेन रूस युद्ध के कारण तेल और गैस के कारखाने बंद हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जानना चाहा कि देश में गैस सिलेंडर की किल्लत कैसे हो गई। भाजपा के सिकंदर कुमार ने कहा कि चालू खाते का घाटा लगातार कम हो रहा है और ये वित्तीय अनुशासन का महत्वपूर्ण मुद्दा है। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राज्यों को राशि आवंटित होती है लेकिन आपात स्थिति में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होती। चर्चा में विभिन्न दलों के कई अन्य सदस्यों ने भाग लिया, चर्चा अधूरी रही। इससे पहले शून्यकाल में तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के शीर्ष अधिकारियों को पद से हटाए जाने का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में रसोई गैस की कथित कमी पर चिंता जताते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि वो संकट को रोकने और कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए समय रहते कदम उठाने में नाकाम रही। खड़गे के आरोपों पर नड्डा ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संकट की घड़ी में भी विपक्ष खासकर कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उच्च सदन में पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को उनका 6 वर्षीय कार्यकाल की समाप्त होने पर उन्हें विदाई दी गई। कई सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए भी लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। मंगलवार को लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दिया। यह चर्चा एक दिन पहले शुरू हुई थी। रेल मंत्री ने कहा कि बजट में रेलवे को हुए रिकॉर्ड आवंटन का लाभ देश के प्रत्येक राज्य को मिलेगा। वैष्णव ने कहा कि रेलवे में डीजल से संचालन के बजाय विद्युतीकरण करने से करीब 6,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में 47,000 किलोमीटर रेल मार्ग पर विद्युतीकरण हो चुका है और इस तरह लगभग 99% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि सरकार का ध्यान बुजुर्ग रेल यात्रियों पर नहीं है, सिर्फ राजस्व बढ़ाने पर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने कहा कि देश अब सही मायनों में रेलवे के विकास को विस्तार दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के अभय सिन्हा ने कहा कि रेल मंत्री ने कई महीने पहले घोषणा की थी कि देश हर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में स्थित शारदा पीठ तक रेल संपर्क की जरूरत बताई। कांग्रेस के भजनलाल ने कोरोना काल के दौरान बंद की गई रेलगाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू करने और रेलवे में तकरीबन 2.5 लाख रिक्तियों को तुरंत भरने की भी मांग की। इस बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब रेलवे का अलग से बजट हुआ करता था तो बजटीय आवंटन केवल 26,000 करोड़ रुपए का था, जो आज 2,81,377 करोड़ रुपए हो गया है। समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने दावा किया कि रेलवे में लोको पायलट के 11,000 पद रिक्त हैं। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने महाराष्ट्र के सभी रेलवे स्टेशनों पर मराठी साहित्य का स्टॉल लगाए जाने की भी मांग की। भाजपा के रविन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन ने सरकार से मांग की कि गोरखपुर स्टेशन पर चौरी चौरा आंदोलन के शहीदों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया जाए और गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा भी लगाई जाए। लोकसभा ने उसी दिन 8 विपक्षी सदस्यों का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। उन्हें संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण में सदन की अवमानना के मामले में निलंबित किया गया था। सदन में कांग्रेस की मुख्य सचेतक कोडी कुनिल सुरेश ने आसन से निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया और विपक्षी सदस्यों के आचरण पर खेद भी जताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निलंबन खत्म करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी दलों को सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और गौरवशाली परंपरा बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। उधर राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना, मनरेगा में अनियमितताओं की शिकायतें मिलने के बाद इस योजना के पूरे स्वरूप में बदलाव का विचार किया गया और विकसित भारत जीरामजी योजना लाई गई। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब गांवों के विकास की योजना दिल्ली में नहीं, राज्य में नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों में बनेगी। चौहान ने कहा कि चर्चा में कई सदस्यों ने दोहराया कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया और उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि बापू हम सब के माननीय हैं, बापू हमारे विचारों में हैं और हमने सदैव बापू का आदर किया है। कुछ लोग बापू का नाम भले ही लेते हैं पर उनके सिद्धांतों को नहीं मानते। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को मनरेगा का बकाया अब तक नहीं मिला है। चौहान ने कहा कि अनियमितताओं की वजह से पश्चिम बंगाल का मनरेगा का बकाया रोका गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। कृषि विभाग की योजनाओं और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की राशि राज्य को दी जा चुकी है। मंत्री के जवाब के बाद सदन में अनुदान की अनुपूरक मांगों और उससे जुड़े विनियोग विधेयक पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और उस पर मौजूदा संकट से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष ने दावा किया कि सरकार की विभिन्न नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के तहत सबसे अधिक खर्च थल सेना पर होता है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा कि अब युद्ध आसमान में होने लगे हैं, इसलिए सरकार को नई रणनीति बनानी होगी। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने कहा कि सरकारी दस्तावेजों के अनुसार कई मंत्रालय ने आवंटित राशि खर्च नहीं की है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात नहीं है, बल्कि सरकार की नाकामी को दर्शाती है। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ वो देश को आगे ले जा रही है। बसपा के रामजी ने सरकार से शिक्षा पर जोर देने का आह्वान किया। शिवसेना उबाठा की प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर बिना चर्चा के कई विधेयक पारित कराने का आरोप लगाया। चर्चा में विभिन्न दलों के कई अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस विनियोग विधेयक में विभिन्न मदों के अलावा उर्वरकों की सब्सिडी पर भी ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उर्वरकों की कोई कमी नहीं होगी और अनुपूरक मांगों में इसका पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगली रबी फसल के लिए अभी से प्रावधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों से राष्ट्र की विकास गाथा में योगदान जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद कुछ सदस्य पुनः सदन में आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। ऐसे सदस्यों को प्रधानमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि राजनीति में फुल स्टॉप जैसी कोई चीज नहीं होती, भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव हमेशा हमारे राष्ट्रीय जीवन का स्थायी हिस्सा रहेगा। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए कहा कि 20 राज्यों से 9 महिलाओं सहित कुल 59 सदस्य अप्रैल से जुलाई के बीच सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त होना राज्यसभा की कार्य प्रणाली में निरंतरता सुनिश्चित करता है और नए सदस्यों को शामिल होने का अवसर भी देता है। उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की कार्यवाही के नियमों की समय समय पर समीक्षा की आवश्यकता जताई। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि उन्होंने जब कार्यभार संभाला था तब पूरा कामकाज कागजों पर दर्ज होता था, लेकिन आज पूरा काम डिजिटल आधारित है। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।